मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 14 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों हर शुक्रवार को मैं आप सबको कुछ सूचनाएं नियमित रूप से दिया करता हूं, तो आज पहले कुछ सूचनाएं सुन लें। वह ये कि कल और परसों शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स कल भी यानी कि शनिवार को आपको एज इट इज मिलती रहेंगी, जैसे कि वो मिलती रहती हैं। और साथ ही आपको कुछ अलग से रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें दो आर्टिकल योजना के होते हैं और दो आर्टिकल कुरुक्षेत्र के होते हैं। इनमें से एक एक इंग्लिश का और एक एक हिंदी का होता है। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। और मित्रों मैं स्पेशली बार बार कहता भी हूं और आज भी कहना चाहूंगा कि जब तक आपकी तैयारी पूरी न हो जाए, और जब मैं पूरी तैयारी की बात कह रहा हूं तो केवल एक ही विषय की तैयारी की बात नहीं कह रहा हूं, पूरी तैयारी न हो जाए। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन स्टूडेंट्स के मेरे पास कुछ मेल आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमने पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर तो कुछ सुन लिए, लेकिन जब मैंने उत्तर लिखने के बारे में सोचा तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। देखिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मतलब कुछ तो कम से कम फायदा हो रहा है, और अब आपने अभी कुछ ही लेक्चर सुने हैं उसी सब्जेक्ट के, तो कैसे आप उत्तर लिख पाएंगे। उत्तर लिखना सबसे बड़ा चैलेंज है और आपकी तैयारी का बिल्कुल अंतिम हिस्सा है। जब तैयारी हो जाए तब उत्तर लिखने की शुरुआत होती है। तो जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखें, सारे लेक्चर सुने, सभी विषयों के लेक्चर सुने, और इसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी जो उत्तर लिखने में आप झिझक महसूस कर रहे हैं, संकोच महसूस कर रहे हैं, लेस ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं, वो सब का सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो पढ़ाया नहीं गया है, समझाया गया है। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के देखिए तो यही कहा गया कि हम पढ़ाते नहीं, हम समझाते हैं। आप उत्तर लिखने में सफल होंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, पूरे सब्जेक्ट्स को सुन लें, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं है वो पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लें, पढ़ने के साथ साथ सब्जेक्ट को समझ लें, और इसके बाद फिर जो वीकली क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाता है उन्हें लिखने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि अब आप इतने सक्षम हो गए हैं कि आप कितना अच्छा लिख पाते हैं वह एक अलग बात है, लेकिन आप लिख ले रहे हैं, और यह कम बड़ी बात नहीं है कि आप लिख ले रहे हैं। और दोस्तों हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय में मैं आपको जो कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में अभी तहलका मचाए हुए है उसके क्या आर्थिक प्रभाव दिखाई देने लगे हैं, इस पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कुछ हम दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज में आपने एक लाइन सुनी जो बहुत ही सामान्य सी लाइन है, बस सतर्कता की बात मैं आपको कर रहा हूं कि कैसे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो बड़ी विशिष्ट किस्म की तैयारी करना चाहते हैं, दूसरों की तुलना में आगे निकलना चाहते हैं, या ये कह लीजिए कि जो फर्स्ट 10 में या 100 में स्थान पाना चाहते हैं वो क्या करते हैं। न्यूज अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपने सुना होगा कि जो कोरोना वायरस को लेकर के जो संकट पैदा हो गया है, तो भारत मालदीव और भूटान इन दोनों को इसके लिए मदद कर रहा है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए मदद कर रहा है। देखिए इसमें दो देश भूटान और मालदीव, राइट। भूटान तो चीन से उधर सटा ही हुआ है, चलिए मालदीव हमारे साउथ में है लेकिन हमारा पड़ोसी देश है। तो अब आप देखिए कि मालदीव और भूटान हमारे दोनों पड़ोसी देश हैं, और राजनयिक दृष्टि से ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं क्योंकि ये चीन से जुड़े हुए हैं। मालदीव अगर समुद्र के रास्ते से इधर मालदीव आ जाएंगे और आप उधर सब रोड से आते हैं तो उधर भूटान पड़ जाएगा, नक्शे की इतनी पकड़ तो आपको अब तक हो गई होगी। अब भारत इनकी मदद कर रहा है। अब आप देखिए तो मान लीजिए कि मेंस में या भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए भूटान और मालदीव के उसके साथ भारत के संबंधों को लेकर के, तो आपको एक वाक्य मिल गया कि कैसे हम उनकी मदद कर रहे हैं। मतलब जब भी कोई आपदा प्राकृतिक संकट उनके सामने आएगा तो भारत हमेशा मदद के लिए सामने आता है, ताकि वो कहीं ना कहीं ग्रेटफुलनेस तो महसूस करेंगे ही, होंगे ही। तो दोस्तों बस एक सिंपल सी चीज, और इसके माध्यम से मैं केवल न्यूज सुनने ये तरीके को बता रहा हूं कि आपको बहुत सतर्क होकर के न्यूज सुनना है, और ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे पॉइंट्स नोट करते जाने, कितना नोट करेंगे पता लगेगा कि नोट किए हुए पॉइंट्स का इतना बड़ा पहाड़ इकट्ठा हो गया कि अब उसको लांघना मुश्किल हो गया, तो क्या फायदा फिर। बस आप केवल ध्यान से सुनिए, सुनने के लिए मत सुनिए, ध्यान से सुनिए, सतर्कता पूर्वक सुनिए। आप ये मान करके चलिए कि आप कोई बहुत बड़ा लेक्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर सुन रहे हैं, तो दिमाग में वो चीजें दर्ज होती चली जाएंगी और ऑटोमेटिक आपको उसका लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है और मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उन्हें आपको नोट भी कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जबरदस्त बात कही है, दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी को किए हैं। हम लोगों ने इससे पहले भी बात की थी और कई बार बात करते हैं, अखबारों में भी आता है, आर्टिकल भी पढ़ते हैं कि कैसे चुनाव में सुधार किया जाए। और चुनाव सुधार के दो सबसे बड़े बिंदु हैं कि कैसे इसमें धन के प्रभाव को कम किया जाए और कैसे आपराधिक वृत्ति के जो लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं उनको कम किया जाए। देखिए, मैंने कहा लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे पास डेटा है कि 2004 में, बल्कि नोट कर लीजिए, 24% जो सांसद थे उन पर आपराधिक आरोप थे, 24%। और 2019 में जो लेटेस्ट है उसमें प्रतिशत बढ़कर के 39 हो गया। 39, सोच करके देखिए, मतलब हमारे 39% सांसद दागी हैं। यहां जो शब्द प्रयोग किया गया, दागी हैं, उनके ऊपर आरोप है आपराधिक, और कोई सामान्य आरोप नहीं है, हत्या, हत्या की कोशिश, दुष्कर्म, अपहरण, ये सब गंभीर मामले हैं और ये संसद में पहुंचे हुए। आप सोच करके देखिए क्या स्थिति। इसीलिए आप देखिए कि धीरे धीरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके प्रति जनता के मन में एक अलग किस्म की धारणा बनती चले जाए। अनफॉर्चुनेट यही है, अदरवाइज जो लीडर्स होते हैं बहुत ही सम्मानी होते हैं। और ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हैं, जो वास्तव में लीडर है जनता उनका सम्मान करती है और हमें सम्मान करना भी चाहिए, क्योंकि वो अपना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे लिए कुर्बान करते हैं, लगे रहते हैं रात दिन। अगर आप उनके नज़दीक जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे। लेकिन होता यह है कि जैसे कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, लगभग लगभग वही स्थिति हमारे पॉलिटिक्स की होती चली जा रही है। तो अब आप देखिए कि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा, निर्वाचन आयोग से, कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं आप हमें बताइए। केंद्र सरकार से भी वो पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं बताइए। केंद्र सरकार, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर पार्लियामेंट में एक एक्ट ले आया जाए कि आपराधिक वृत्ति वाले को टिकट नहीं दिया जा सकता तो खत्म हो गई बात। मजेदार बात है कि कोई राजनेता इसका विरोध भी नहीं करेगा, कोई पार्टी विरोध नहीं करेगी, जनता को क्या जवाब देगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या दिशा निर्देश दिए हैं, देखिए सीधी सी बात है कि अब आपको, जब आप टिकट नहीं दे रहे हैं, किसी आपराधिक व्यक्ति को टिकट दे दिया तो अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने अच्छे व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया। और जो आप बताएंगे उसमें यह बात नहीं चलेगी क्योंकि उसके जीतने की संभावना नहीं थी, पहले क्लियर कर दिया, नहीं तो सब लिख लिख देते, क्योंकि हम अगर अच्छे व्यक्ति को दे देते तो जीतने की संभावना नहीं होती। नहीं, ये बहाना नहीं चलेगा, ये जवाब नहीं चलेगा, आपको बताना होगा कि आपने बेदाग नेता क्यों नहीं उतारा। इसके बाद देखिए कि टाइम फ्रेम, क्योंकि अगर टाइम फ्रेम नहीं है तो कुछ नहीं, क्योंकि अभी भी ये है बकायदे सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी 2018 में भी निर्देश दे चुकी है कि जब आप फार्म भरेंगे नामांकन फार्म तो उसमें बकायदे बोल्ड अक्षरों में आप लिखेंगे कि आपके खिलाफ कौन कौन से मामले लंबित है, बोल्ड अक्षरों में। इसके बाद बकायदे आप अपना आपराधिक रिकॉर्ड वेबसाइट पर डालेंगे, फिर कम से कम 3 अखबारों में आपके उसके डिटेल्स को विज्ञापित करना पड़ेगा 3 बार। सोच करके देख, कम से कम 3 बार अखबार में, 3 बार, यानी कि एक बार कर दिया नहीं, 3 बार, ताकि पब्लिक जाने कि हम किन्हें अपना नेता चुन रहे हैं। तो इसमें उन्होंने कह दिया कि 48 घंटे के भीतर जो आपराधिक रिकॉर्ड होगा नामांकन, तो क्योंकि जनता तो वोट तो बाद में देगी ना, 48 घंटे के भीतर उनका रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए और बताया जाए कि जुर्म किस तरीके का है और जो अभी केस चल रहा है उसकी क्या स्थिति है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो नेता का जो आपराधिक रिकॉर्ड होगा उसको हर पार्टी अपनी अपनी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर और समाचार पत्रों में देगी। और फिर है कि नामांकन के 72 घंटे में फिर राजनीतिक दल अनुपालन रिपोर्ट चुनाव आयोग को देंगे। यानी कि 48 घंटे के भीतर तो आपने सब डाल दिया, अब 72 घंटे के अंदर अब पार्टियों को बताना पड़ेगा कि ये सब करने के बाद आपने क्या एक्शन लिया है। दोस्तों ये बहुत ही क्रांतिकारी बात कही गई है। यहां हमारे जो HY कुरैशी साहब थे, जो हमारे इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट दिया, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई मौलिक अधिकार तो बहुत बड़ी चीज होती है, जब मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं, जो दागी व्यक्ति है इसका चुनाव में लड़ने पर रोक लगाई जा सकती, जब आप मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकते हैं। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव में लड़े, इस पर भी रोक लगाई जा सकती है, किया जा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से ये मोमेंट बन रहा है, विश्वास है कि शायद इस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाए ही जाएंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव। पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक हो गई है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और चीन तो बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति भी है, आयात के मामले में भी और निर्यात के मामले में भी। दुनिया के बाजार चाइना सामान से पटे पड़े हैं, और यहां तक कि अमेरिका तक के बाजार, और इसीलिए अब अमेरिका और चाइना के बीच में बकायदे ट्रेड वार की भी शुरुआत हो गई है। तो सिंपल सी बात है कि एक तो सिंपल कह लीजिए कि चाइना का सामान जो दूसरे देश मंगाते थे उनका आयात बंद सा हो गया है, काफी तेजी से कमी हो गई है। दूसरा जो प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर है कि चीन के यहां तेल की खपत बहुत कम हो गई, पेट्रोलियम पदार्थों की खपत बहुत कम हो गई है, क्योंकि अब खपत ही नहीं हो रही तो उसने आयात कम कर दिया है। तो जब पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम हो गई, और चीन बहुत बड़ा आयातक है पेट्रोलियम पदार्थों का कहना चाहिए, तो जब खपत कम हो गई है तो इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल है वो ज्यादा हो गया है, तो तेलों की कीमतों में बहुत तेजी से कमी आने लगी है, बहुत कमी आने लगी है। मतलब तेल की कीमत में पिछले कुछ ही दिनों में कहा जाता है $10 प्रति बैरल की कमी आ गई है, और $50 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। अब इसको आप भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़ करके देखिए, हम अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल मंगाते हैं, हमारी जो विदेशी मुद्रा हो ज्यादातर तेल मंगाने में ही खप जाती है, तो वहां अगर तेल की कीमत कम हुई तो उसका फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को पड़ेगा। एक बात और जो मैंने इससे पहले कही कि लोगों ने चीन का सामान मंगाना कम कर दिया है, तो अब वो किसका सामान मंगाएंगे, तो वहां भारत को अपनी संभावना दिख रही है कि अब सामान की तो उनको जरूरत है, तो शायद भारत का निर्यात इससे काफी कुछ बढ़ेगा। एक जो बहुत जो बड़ी बात है वो ये है कि चीन में असेंबलिंग का काम बहुत होता था, यानी असेंबलिंग का मतलब है कि कलपुर्जे वो बाहर से मंगा लेता था और फिर उसे वो मशीन के रूप में, दूसरी चीजों के रूप में, एक मुकम्मल एक आइटम के रूप में तब्दील कर देता था। तो अब उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है, मतलब चीन के उद्योग बहुत कुछ बंद हो गए हैं, छोटे जो उद्योग हैं उन पर तो बहुत बुरा असर पड़ा है। तो असेंबलिंग का काम लगभग बंद सा है, मतलब 40% उद्योग का जो है बहुत प्रभावित हो चुके हैं चीन के असेंबलिंग के मामले में। अब अगर चीन का विकल्प दुनिया को ढूंढना हुआ तो वो विकल्प कौन सा हो सकता है, तो वह विकल्प भारत हो सकता है। तो इससे भी उम्मीद है कि भारत में जो औद्योगिक विकास है असेंबलिंग के काम के माध्यम से ज्यादा होगा, तो इससे हमारे यहां रोजगार की स्थिति भी बढ़ेगी। लोगों ने चीन होकर के विदेश यात्राएं करनी बंद कर दी हैं, तो ये भी देखने में आ रहा है कि एयर इंडिया में जो बुकिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि एयर इंडिया को इससे फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, ये मैंने खासकर, लेकिन हम थोड़ी सी इस बात को भी यहाँ देख लें कि दो क्षेत्रों में हमें थोड़ी सी नुकसान की भी आशंका है। पहला तो ये है कि दवा उद्योग, चीन से बहुत दवाइयाँ जिनसे हम बनाते थे वो सामान आयात होता था, अब वो सामान नहीं आएगा, उससे संबंधित कलपुर्जे नहीं आएंगे, तो हमारे यहां दवाओं की कमी हो सकती है, ये आशंका व्यक्त की जा रही है। और दूसरा है कॉटन इंडस्ट्री, भारत कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और चीन हमारे यहां से बहुत अधिक कॉटन मंगाता था, अब वो कॉटन मंगाना बंद कर देगा तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव हमारे यहां के जो कॉटन उत्पादन है उस पर पड़ेगा। तो दो चीजें हैं, भारत के संदर्भ में भी मैंने थोड़ी सी बात की और विश्व के संदर्भ में भी थोड़ी सी बात की, तो बहुत ही मूल पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, और मेरी समझ से इतना ही जानना इस टॉपिक को लेकर के आपके लिए पर्याप्त होगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अवनीश कुमार साहिल कृष्ण जम्मू कश्मीर से, डॉक्टर प्रशांत देवांगन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, विशाल केसरी इलाहाबाद से, और कमलजीत कौर, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मित्रों मैं ईमेल लिखने वाले दोस्तों को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा। एक हैं डॉक्टर प्रशांत देवांगन जो छत्तीसगढ़ से हैं, जिनका DYSP के लिए सिलेक्शन हुआ है। प्रशांत, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी हैं कमलजीत कौर जिनका एक जो पेपर उन्होंने भेजा था वो फॉरेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पेपर उनका सेलेक्ट हुआ है और वो हमारे दोनों ये जो मित्र हैं डेली ऑडियो लेक्चर के बहुत ही प्रिय और बहुत ही गंभीर श्रोता रहे हैं। तो कंवलजीत आपको भी बहुत बहुत और बहुत बधाइयाँ और बहुत ही बेहतर भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएँ। और दोस्तों अब इसी के साथ ही मैं आप सबसे इससे पहले कि इजाज़त लूँ अभिवादन करना चाहूँगा और इजाज़त भी 2 दिनों के लिए लेना चाहूँगा। 2 दिनों के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। नमस्कार।